मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मित्रों 18 जून 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अजीत ठाकुर, आप मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं, नरविंदर सिंह, आपका गांव है मुडकी, जिला है फिरोजपुर पंजाब से हैं, दिनेश कुमार वर्मा, आप चुरू राजस्थान से हैं, विशाल कुमार, आप इतवा जिला मुंगेर बिहार से हैं, उमा उपाध्याय, आप चांपदनी पश्चिम बंगाल से हैं, और शुभम सिंह गोहिल, आप उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। तो अजित, नरविंदर, दिनेश, विशाल, उमा और शुभम, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए अब हम लोग न्यूज पर बात करते हैं कुछ सूचनाओं के बाद। सूचना यह है कि अगर आप लगातार YouTube पर AFEIS को फॉलो कर रहे होंगे तो अभी आपको एक नया प्रोग्राम उसमें मिला होगा, जिसमें मैंने अभी जो प्री 2018 का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर की मित्रों समीक्षा पेश की है, विस्तार के साथ समीक्षा दी गई है। वो 20 मिनट से ऊपर का वो प्रोग्राम है, 20-22-23 मिनट का प्रोग्राम है। और इनफैक्ट चूंकि आप सब मेरे बड़े विश्वसनीय और प्रिय श्रोता हैं, इसलिए ये सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि 2018 का पेपर कैसा रहा, ताकि आप 2019 के लिए अपनी सही ठोस वैज्ञानिक तार्किक रणनीति तैयार कर सके, अगर आपको लगता है कि उससे आपको मदद मिल सकती है, तो आप वह प्रोग्राम YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और इसी के साथ ही मित्रों, यह भी है कि आज के मुख्य विषय में के रूप में हम इसी पर ही बात करेंगे, लेकिन यह YouTube चैनल के प्रोग्राम का डुप्लीकेट नहीं होगा। नो डाउट कि उसकी कुछ बातें इसमें भी आएंगी, लेकिन यह एक नए तरीके से होगा और उसमें एक नए ढंग से चीजों को पेश किया गया है। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं फिलहाल कि आप मेरे इसको अभी सुनेंगे, या तो इससे पहले आपने यूट्यूब का वह प्रोग्राम सुन लिया होगा, देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा हो भी तो आप इसे सुनने के बाद उसे देख लेंगे। तो मैं उन चीजों को यहां रिपीट करने से बचने की कोशिश करूंगा, राइट फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, एक छोटा सा करेक्शन है, और वो ये है कि ट्रांस फैट के बारे में जो मैंने आपसे बातें की थी, तो मुझे कुछ आप सब से ही पता लगा कि वहां मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका लक्ष्य निर्धारण करने वाले जो संस्थान है, शायद कह दिया होगा जल्दी जल्दी में, तो आप लोगों ने ध्यान दिलाया है, वो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसे आप लोग करेक्ट कर लें। इस तरह के फैक्ट्स प्री एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, राइट। मित्रों, जहां तक न्यूज का सवाल है, आज कोई खास न्यूज नहीं है जिस पर हम लोग बात कर सके, यानी कि कल कोई खास न्यूज नहीं है जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो आज मैं अब सीधे सीधे आपसे 2018 का जो प्री का पेपर आया है, जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर, उसी के बारे में बातें कर रहा हूं। मित्रों, मेरे समझ से लगभग 3-4 दिन ही हुए होंगे कि YouTube चैनल पर जब मैंने प्री की अपनी समीक्षा डाली है, तो उसके बारे में बट नेचुरल है कि मैं जब पहले से ही हम लोगों को मालूम था कि अलग अलग तरह के कमेंट आएंगे। मेरा जो कमेंट है वो आप अभी दूसरों के जो कमेंट्स हैं उन सबसे थोड़ा सा हटकर है। ज्यादातर कमेंट्स इस बात को लेकर के हैं कि अभी जो 2018 का जो पेपर था वो इस पहले के पेपर से कठिन है। मेरा ये मानना है कि नहीं, पिछले पेपर से वो कुछ सरल है, मेरा ये मानना है। और अगर हम इसकी तुलना करना चाहें कि ये किस साल के पेपर के समकक्ष है, तो पिछला तो 2017 का हो गया, तो मुझे लगता है कि 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2016 के क्वेश्चन पेपर के ज्यादा करीब है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, राइट। 2016 में आपको मालूम है कि जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थोड़े से हायर रेंज में थे, 58% कट ऑफ मार्क्स, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में बट नेचुरल है कि मुझे जो लग रहा है कि जो 2018 के अभी एग्जाम हुए हैं उनके कट ऑफ मार्क्स 55 से तो नीचे नहीं ही होने चाहिए, 55 प्लस कुछ होना चाहिए। तो मित्रों, मेरी इस बात से बहुत से स्टूडेंट इत्तफाक नहीं रख रहे हैं और स्वाभाविक है, वो जरूरी नहीं है कि वो इत्तफाक रखें, और जो इत्तफाक नहीं रख रहे हैं मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं और उनकी असहमति को गरिमा प्रदान करता हूं बस। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट यहां जरूर करना चाहूंगा, बहुत से कमेंट्स जैसा कि यूट्यूब पे प्रोग्राम देखने के बाद डाल देते हैं स्टूडेंट्स, वो कमेंट्स मैंने देखे, पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं जिनको ये बहुत पसंद आया, जो मेरे इन विचारों से एग्री कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी हैं जो मेरे विचारों से असहमत हैं और उन्होंने अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी भाषा में, कुछ लोगों ने असहमति जताई है तो कुछ लोगों ने अपना विरोध भी जताया है। देखिए, विरोध और असहमति दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, बिल्कुल मतलब यूं कह लीजिए कि पर्यायवाची नहीं है। खैर, जिनको लगता है कि क्या फालतू की बात की जा रही है, इतनी उल्टी बात की जा रही है, गलत कहा जा रहा है, भटकाया जा रहा है, तो वो असहमति की जगह विरोध पर उतर आते हैं, और जो थोड़ा सा तार्किकता को लेकर के चलते हैं, जो एक थोड़ा सा सोच विचार के साथ करते हैं, तो वो फिर अपनी असहमति जाहिर करते हैं, और असहमति जाहिर करते समय वो अपना एक तथ्य भी दे देते हैं कि वो क्यों अपनी असहमति जाहिर कर रहे हैं। तो मित्रों, ये सब तो चीजें होती ही रहती हैं, और खासकर जब आप सोशल सेक्टर में काम करते हैं और कुछ इस तरह का ओपिनियन देते हैं तो ये स्वाभाविक है। तो मैं उन सबका बिल्कुल स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप लोगों का भी स्वागत है, अभिनंदन है, अगर आप मेरे आज के उद्बोधन पर अपनी तरफ से कोई कमेंट करें तो। तो फ्रेंड्स, यहां जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक अलग तरीके से करने जा रहा हूं। देखिए, पहली तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई पेपर सरल है, कोई पेपर कठिन है। क्या कारण है कि एक ही पेपर है और उसको कुछ लोग सरल कहते हैं, कुछ लोग कठिन कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि इसका बहुत कुछ दारोमदार हमारी अपनी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। जब हमारे जाने पहचाने प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो हमें सरल लगने लगता है, जब अनजाने से प्रश्न आ जाते हैं, अरे ये कहां से पूछ लिया गया, पता तो लग रहा है कि पूछा तो यहां से गया है लेकिन उसके जो विकल्प दिए गए हैं वो बहुत ही भटकाने वाले दे दिए गए हैं, तो बट नेचुरल है कि वो हमें कठिन लगेगा। तो एक तो यह है कि सरल और कठिन का जो मामला होता है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मैं आपको अब एक तथ्य बताना चाहूंगा, मुझे नाम याद नहीं है, अभी जो आपके रिजल्ट आए हैं उसमें जिनकी 19th रैंक है यूट्यूब पर उनका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नाम अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, जब वो प्री के अपने स्कोर बता रहे थे तो उनका प्री का जो स्कोर है 75% या 75.2% है, लेकिन 75% तो है ही। अब आप सोच करके देखिए कि कट ऑफ मार्क्स जहां 52 point something है वहां एक स्टूडेंट ऐसा है जो 75% भी स्कोर कर रहा है। तो अब आप उस 75% वाले स्कोर 75% स्कोर वाले स्टूडेंट से पूछे तो कहेगा, हाँ यार पेपर तो बड़ा मजेदार था, ठीक था, अच्छा था, सरल ही था, बहुत कठिन नहीं था। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बट नेचुरल की इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पेपर कठिन लगा। जिनका हो गया और जो 55 के आसपास रहे तो वो कहेंगे कि ठीक ठाक ही था, न सरल था न कठिन था, देखते हैं क्या होता है। तो ये तो एक सब्जेक्टिव मामला है, पूरी तरह से व्यक्ति के स्वयं पर निर्भर करता है। लेकिन मित्रों, इन सबको हटा करके भी एक मानक होते हैं कि सामान्य रूप से कहा जा सके, एक तटस्थ व्यक्ति कह सके कि ये पेपर सरल था या पेपर कठिन था, राइट? यहां मैं जो सरल और कठिनता का एक जो पैमाना लेकर चल रहा हूं, जिसकी चर्चा इनफैक्ट यूट्यूब वाले प्रोग्राम में नहीं है, उसी की चर्चा मैं यहां आपसे कर रहा हूं, और वह यह है कि जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका सीधे सीधे उत्तर दे पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, किताबों में उस तरह से उसके उत्तर भी नहीं है, टॉपिक जाना पहचाना सा लग रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट? तो अगर यूपीएससी उसके लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रही है और उसकी फ्रेमिंग इस तरीके से कर रही है कि अगर आप अपने विषय को थोड़ा सा भी समझते हैं, मैं देखिए गहराई की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप अपने विषय को थोड़ा सा भी समझते हैं तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं कि आपको पढ़ें और फट से निशान लगा दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। हमने रट रखा है कि 1885 में हुई थी और हमने निशान लगा दिया। उस तरह के प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन अगर दिमाग पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करके देखेंगे, विकल्पों पर विचार करेंगे, तो बड़े आराम से आप, क्योंकि समय भी वो देख रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन के लिए समय ही कितना दिया गया, 1.2 मिनट्स, हार्डली 1.2 मिनट्स, जिसमें 0.2 को तो आप निकाल ही दीजिए, एक मिनट में आपको एक प्रश्न हल करना है, तो वो बहुत ज्यादा उलझाव वाले भी नहीं देते। कुछ तो वो उलझाव वाले देते ही देते हैं, कुछ तो देंगे ही, लेकिन आपके पास अगर हम 60% भी चलिए कट ऑफ मार्क्स मान ले, जो हायर रेंज में होता है, तो 40% की गुंजाइश तो है ना, स्पेस दे रखा है 40%, आपको 100% स्कोर नहीं करना है, तो आप उन 40% को आप उस रेंज में डाल दीजिए कि बहुत कठिन है और बहुत ज्यादा समय की मांग करते हैं। एक स्टूडेंट ने यह कमेंट किया यूट्यूब पर ही कि सर आपका कहना सही हो सकता था बशर्ते कि इस पेपर के लिए 2.5 घंटे का समय दे दिया जाता। एक तार्किक कमेंट है, राइट। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं अब आपको एक प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं मित्रों। ये क्वेश्चन पेपर सेट डी से है और डी का 17वां प्रश्न है, 17th, और मेरे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने उन्हें उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र होता है, खासकर भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, वहां की राजनीति, वहां की कला, वहां की संस्कृति, वहां की प्रकृति, वेजिटेशन, प्राणी, इन सब के बारे में वो याद करने की कोशिश करें कि मैंने तार्किक तरीके से बताया है था और इंटरकनेक्ट करके बताया था। और आश्चर्य की बात यह थी कि मैंने कुछ तथ्य बताए थे और इसके बाद जो मैं प्रश्न पूछता चला गया था उनके जवाब आप सब स्टूडेंट्स ने ही दिए थे। याद करने की कोशिश कीजिए, आपको याद आ जाएगा। उसे याद करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि यदि आप उसे याद कर लेंगे तो अभी मैं जो प्रश्न पढ़ रहा हूं वो आपके लिए सरल हो जाएगा, और यदि याद नहीं कर पाएंगे, भूगोल में ढूंढेंगे, तो फिर यह पर प्रश्न आपके लिए मुझे नहीं मालूम है कि सरल होगा या कठिन होगा, लेकिन सरल तो कम से कम नहीं ही होगा, राइट। तो देखिये, मैं प्रश्न पढ़कर सुनाता हूं और उसके विकल्प बताता हूं आपको, और इसके बाद आप इसका उत्तर ढूंढिएगा। 17वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 सेट डी। प्रश्न है, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिग से पर्ण रूपांतरण होता है, ऑब्लिग होते हैं। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा अभी। पहला, कठोर एवं मोमी पर्ण, दूसरा लघु पर्ण, तीसरा पर्ण की जगह कांटे, राइट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब है ए केवल 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। बेहतर होगा कि इसको हल करने से पहले आप इसे सीधे सीधे अपने अनसॉल्व पेपर में जाकर के देखें, है ना। सुनने में बात अलग रहती है, लेकिन जब आप उसी चीज को पेपर पर देखते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा उस पर टिकता है, स्थिर होता है, राइट। मैं अब इसका इंग्लिश पढ़ दे रहा हूं। फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 1, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, 2, टाइनी लीव्स, 3, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, तीसरा विकल्प है। इसके बाद ये सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ए 2 and 3 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली, डी 1, 2 and 3। मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण केवल मैंने दिया है, बहुत दे पाना संभव नहीं है और समय भी इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सब इस पर अभ्यास करें, और मैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एक जो बहुत अलग किस्म की जो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है उस पर फिर आगे चलकर बात करूंगा। वो अलग रिक्वायरमेंट, सामान्य तौर पर बैलेंस और इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, एक अलग किस्म के रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो मैं किसी दिन आपसे उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, निकिता तोमर इंदौर से, प्रिया मिश्रा, तनु प्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, आनंद कुमार मोतिहारी बिहार से, सिद्धार्थ सिंह और डॉक्टर स्टालिन सचदेवा, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।